Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
गाय भैंस का खाद यूरिया डालने से नहीं होगा, वो तो कहा है यूरिया जितना डाल के करोगे फसल तो पैदा होगा लेकिन जमीन की योग्यता समाप्त तो हो जाएगी। निर्बीजा पृथ्वी, पृथ्वी में वह पृथ्वीत्व तो सहार खत्म हो जाएगा। इसलिए गाय पालो, गौशाला बनाओ और गाय पालो, दूध पियो और खाद जमीन में डालो, अच्छे फसल होगी। आज वो संस्कार ही खत्म हो गया भाई। धीयंत्रेण, हाँ यहां के भक्ति कलम, वो जमीन क्या है? तो ये शिवा, मैंने खूब भक्ति करके हृदय रूपी खेत को खूब उर्वरा बना रखा है, खूब उर्वरा है। जो फसल मैं लगाऊं तो वहां खूब फलने फसल देने में तैयार है वो भक्ति कलमा। और पानी क्या है फिर? पानी भी तो चाहिए। तो पानी है महाराज, धीयंत्रेण घटो। तो तुम लोगों ने किसान को देखा है कि नहीं, वो रहड़ होता है ना, रहड़ रेट, वो बैल चलता रहता है, वो एक यंत्र है, वो घूमता रहता है, उसमें डब्बे लगे हुए हैं, नीचे से आते समय पानी भर के ले आता है और ऊपर आते ही फिर वो उल्टे मुख होते ही पानी सब गिरा देता है, फिर उल्टे मुख नीचे जाता है और फिर जब आने लगता है तो फिर पानी भर के आता है। बैल घूमते ही रहता है, वो यंत्र घूमता ही रहता है। शंकराचार्य कहते हैं कि मेरी बुद्धि रूपी यंत्र है वो रेट, धी यंत्र। फिर घड़ा क्या है? बचो घटे ना, मेरी जो वाणी है, बाकी इंद्रिय है, यही घड़ा है। कविता कुल्यो उपकुल्या क्रमई, पानी कहां से लाओगे? बोले कविता रूपी आपके स्तोत्र रूपी, आपके स्तोत्र रूपी नदियों से, कुएं से, वाणी रूपी घट में, बुद्धि रूपी यंत्र से चलाकर भाव रूपी जल को निकाल के हृदय रूपी खेत को खूब सिंचा हुआ है। ये मरुभूमि नहीं है, है? आनीतेश्च सदा शिवस्य चरितांबो, क्या लाए हो? तो आनीत कहां से? कविता कुल्या शिवचरिता रूपी अंब, चरितांब, भगवान शिव के दिव्य लीला दिव्य चरित्र रूपी जल को वाणी रूपी घड़े से बुद्धि रूपी यंत्र के द्वारा चलाकर और कविता रूपी नदियों में से वो पानी भर के ले आया है। आनीते च सदा शिवस्य चरितां भोराशि दिव्यामृत ही, दिव्य अमृत रूपी जल लाके सिंचन किया है। कहा? हृत केदार युताश्च भक्ति कलम, हृत रूपी हृदय रूपी केदार खेत, हृदय रूपी केदार में भक्ति रूपी खाद डालकर आपके दिव्य चरित्र रूपी पानी से सिंचा हुआ है वह खेत। तब फिर क्या? साफल्य मातन्वते, मेरा हृदय रूपी खेत अच्छा फसल देने में समर्थ हो चुका है, योग्य हुआ है। साफल्यम किसी भी समय में कोई भी फल देने में समर्थ है। धर्मार्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के फल देने में मेरा हृदय रूपी खेत अब योग्य हो चुका है महाराज। दुर्विच्छन मम सेवकस्य भगवन विशेष भीति कुतः, तब मेरे जीवन में अब दुर्भिक्ष होगा नहीं महाराज, आप आ जाओ खाने के लिए अकाल नहीं पड़ेगा, दुर्भिक्ष नहीं होगा, अब आराम से विराजमान हो, मेरे में खूब फसल लगे हुए हैं, खूब अन्न होगा, आपको जो चाहिए वो सब आपको खाने को मिल जाएगा, दुर्भिक्ष होगा डर के मारे, है पता नहीं तूर खाने को देगा कि नहीं, पहनने को मिलेगा कि नहीं, है रहने के लिए ठीक से घर मिलेगा कि नहीं, तू सेवा ठीक से कर पाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना महाराज। मैं समृद्धशाली हूं, मैं किसान हूं, आपको जो चाहिए वो सेवा करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास खेत सुफला है, सस्यशालिनी है। दुर्भिक्षान मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीति कुतः। भीति, आपको डरने की जरूरत नहीं है, दुर्भिक्ष होगा खाने को नहीं मिलेगा ऐसा समझकर डरने की जरूरत नहीं। आप आओ ना, आपके आ जाने से ये और भी ज्यादा सस्यशालिनी होगी, सुभिक्ष होगा, आपके नाम से मुझे भी खूब खाने को मिलेगा, दुर्भिक्ष की भीति मुझ में भी नहीं होगा और दुर्भिक्ष की भीति आपको भी नहीं रहेगा। आप और हम बड़ा आराम से ही बैठेंगे, आइए महाराज आप निवास करो है? ये भाव है। भक्त भी भगवान की भक्ति करके भगवान के भरोसे में सारे दुर्भिक्षों से निर्भय हो जाता है, सारे दुशासनों से निर्भय होता है। सुशासना की इतनी कल्पना करता है भक्त कि वो कल्पना ही नहीं कर सकता है कि यहां भगवान के राज्य में कुशासन हो, वो कल्पना नहीं करता, इसलिए उसी से वो आनंद का अनुभव करता है। पापोत्पात विमोचनाय रुचिरेर ऐश्वर्याय मृत्युंजय स्तोत्र ध्यान नति प्रदक्षिण सपर यालोचना कर्णने जिह्वा चित्त शिरोऽङ्घ्रि हस्तनयन श्रोत्रैरहं प्रार्थितो मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुर् मामेव मामेवच। अब उस गुरु के पास शंकराचार्य जी पहुंच गए। मान लो एक बहुत ही अज्ञानी पट्ट मूर्ख शिष्य है, उसको उपदेश अपने ही मुख से करना पड़ता है गुरु को। यहां शंकराचार्य जी भगवान शिव से ये कह रहे हैं, मान लो कि महाराज मैं सनत कुमार हूं जैसा योग्य शिष्य नहीं हूं। आप लोग हैं सनत कुमारों की कहानी सुनी है कि नहीं आप लोगों ने? जब सनत कुमार ब्रह्मा जी के संकल्प से मानस पुत्र के रूप में पैदा हुए तो मानस पुत्र थे, इसीलिए वो जन्मना ज्ञानी थे, उर्धरेत थे, अपरिग्रही थे, वैराग्य से संपन्न थे, ज्ञान वैराग्य विवेक वैराग्य से संपन्न थे, उनको सारा औपनिषद विद्या जन्मना सिद्ध था, पूर्व जन्म में ही उन लोगों ने श्रवण मनन कर चुके थे, कल निधिध्यासन की अवकाश थी, शायद उतनी में ही वह योग भ्रष्ट हो गए और इस बार जन्म हो गया, तो वह उनको कल निधिध्यासन करना था, श्रवण करना बाकी नहीं था, मनन और निधिध्यासन करना था, उतने के लिए शायद उनको ब्रह्मा जी के संकल्प से जन्म लेना पड़ा, वो भी योनिज नहीं है, प्रारब्ध जन्म जन्य जीवन नहीं था सनत कुमारों का। तो आप लोगों को कई बार सुनाया है, इसी प्रसंग में भी मैंने सुनाया, वे चारों भाई नित्य निरंतर औपनिषद ब्रह्म विद्या का ही चिंतन किया करते थे। एक दिन एक भाई व्यासपीठ पर बैठता था और तीन वहां नीचे बैठकर श्रोता बनते थे और एक भाई वक्ता बनते थे। आज शुरू शुरू में 5:30 बजे जब हम ऊपर आए तो हॉल में कौन था? बेचारे दो सज्जन कपल आके बैठे थे भाई। मैं आते जब तो हमने कहा अरे दो हैं सनत कुमारों के तो तीन हैं, एक मोहिनी से आ गया, फिर बाद में चिमन भाई आ गए तो चार हो गए। अरे ब्रह्म विद्या तो एक में भी शुरू हो जाता है, सनत कुमारों के तो तीन ही तो श्रोता थे, एक वक्ता हो गया तीन श्रोता हो गए। दूसरे दिन फिर दूसरे की बारी होती थी कि वह वक्ता के सिंहासन में बैठता था और बाकी तीन फिर श्रोता बनकर नीचे बैठते थे। तीसरे दिन फिर तीसरे की बारी आती थी, वह सिंहासन में बैठकर वक्ता बनते थे और बाकी तीन भाई श्रोता। चौथे दिन चौथे की बारी आती थी, वो सिंहासन में बैठ गद्दी पर बैठकर वक्ता होते थे, बाकी तीन श्रोता होके। इसी तरह नित्य निरंतर वेदांत विचार हुआ करता था, ब्रह्म विचार हुआ था, उपनिषद स्वाध्याय चिंतन हुआ करता था। हाँ, कोई कमी नहीं, सभी विद्वान थे और फिर भी सभी जिज्ञासु थे। आसुप्ते रामृते कालम नैद वेदांत चिंतया, उपनिषद की आज्ञा है, तुम जागो, आंख खुले, तब से ब्रह्म विचार शुरू करना, जब तक निद्रा न लगे तब तक ब्रह्म विचार ही करना। जब से पैदा हुए हो तब से, जब तक मृत्यु न हो तब तक ब्रह्म विचार ही करना है। तो ये वेद की आज्ञा भी है, सनत कुमार यही करते थे। तो नारद जी भी मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। नारद जी घूमते हुए आ गए, इस कहानी मैंने पहले भी सुना चुका हूं। घूमते हुए आए, देखा ब्रह्म विद्या की चर्चा कर रहे हैं सनत कुमार आदि। सुना तो बहुत अच्छा लगा, क्या सुंदर सत्य वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, जगत मिथ्यात्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, क्या युक्ति से, आत्मानंद जैसे करता है वैसे, उससे ज्यादा अच्छा। उनके मुकाबले में आत्मानंद कहां पहुंचेगा भाई, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां सनत कुमारों का सत्संग, उनकी युक्ति, उनका प्रमाण, और कहां आत्मानंद। अपने आप को ये कुछ ऐसा है उनकी तुलना करना भाई है? कि भक्त उस सिद्धांत को समझे। नारद जी को अच्छा लगा तो बोले, ये विद्या तुमको कहां से मिली भाई? सनत कुमारों ने कहां से मिले, जन्मजात हमको सिद्ध है ये विद्या। बोले, कोई गुरु से नहीं मिला? बोले, नहीं, कोई गुरु नहीं है। अरे ख्याल रखो, यदि तुमने जीवन में गुरु नहीं किया तो शास्त्र विधि का उल्लंघन होगा। भले तुम ज्ञानी हो, शास्त्र विधि का उल्लंघन होगा। और गीता में भगवान ने कह दिया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृष्ट्य वर्तते कामकारता, न तो सिद्धि मापनोति, न शांति, न पराम गति, न सुखम, न पराम गति। शास्त्र विधि का उल्लंघन करके व्यवहार करने वाला व्यक्ति को संसार में किसी भी हालत में सुख और शांति की अनुभूति कर ही नहीं पाता है। चाहे कोई भी हो, शास्त्र विधि का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तुम लोग भी गुरु धारण करो तो फिर ये विद्या प्रामाणिक होगी। तो हमने बताया था कि गुरु, तो तुम ठीक कह रहे हो भाई, हमको गुरु तो करना ही चाहिए। सनत कुमार गुरु खोजने गए तो ब्रह्मा जी के यहां, तो ब्रह्मा जी के करतूत देखा तो अरे ऐसे प्रपंच को क्या गुरु बनाना है भाई। ब्रह्मा ये न कुलाल बन नियम तो ब्रह्मांड भांडोदर है। जैसे आजकल छत्री के व्यापारियों को खाना खाने का भी फुर्सत नहीं है, है? उसी तरह ब्रह्मा जी को फुर्सत ही नहीं है। आजकल और व्यापारियों को बहुत फुर्सत है, छत्री के व्यापारी को है, जूते और चप्पल के जो प्लास्टिक के जूते है, रबड़ के जूते चप्पलों को, व्यापारियों को तो फुर्सत ही नहीं है भाई। ये तो सीजन है उन लोगों का। उसी तरह ब्रह्मा जी लगे हैं, क्या ज्ञान का उपदेश करेंगे, उनको क्या गुरु बनाएंगे उनको। तो चल पड़े विष्णु के पास। अब विष्णु तो बस क्षीर सागर में सोए हैं, शेषनाग के और भूदेवी श्रीदेवी पांव दबा रही हैं, सारा दुनिया का अलंकार अपने ही शरीर में श्रृंगार रखा रहे हैं। हाँ, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, देख लो। बोले, ये ऐसा प्रपंची, कहां हम केवल लंगोटी लगा के चलते हैं, कहां ये ऐसे को क्या गुरु बनाना है। चलो फिर कहां चलते हो, तो फिर कैलाश चले गए, कैलाश पर्वत में है। तो दूर से देखा भगवान शिव तो कैलाश के चोटी पर बैठे हैं और बामांगे च विराजते भूधर सुता, और बाएं गोद में पार्वती को रखा है और अंकमाल करके बैठे हैं। अपने आप जमीन में बैठे हैं और पार्वती को अपने खूणा में रखा है, गोद में रखा है। क्या ये तो स्त्री परम लंपट है भाई, ऐसे को क्या गुरु बनाए। चलो अब किसको गुरु बनाए। तो भगवान शिव समझ गए ये गुरु खोजते हुए ही चल रहे हैं, लेकिन गुरु में जो गुण खोजना चाहिए था वो चश्मा नहीं लगाया, दोष खोजे वो चश्मा लगा लिया। तो इनको जहां भी जाएंगे दोष ही दिखेगा। फिर भी श्रद्धा है, शास्त्र में विश्वास है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, जिज्ञासु है, इनकी इच्छा तो पूरी कर देनी चाहिए। शिव जी को पार्वती को कहा कि तुम बैठो मैं आता हूं, तो 6 वर्ष का 5 वर्ष का रूप धारण करके भगवान शिव दौड़ते हुए गए। सनत कुमार जिधर गए थे पीछे पीछे उनके पीछे पीछे दौड़कर उनसे भी आगे निकल गए। सनत कुमारों ने देखा वो हम तो 16 वर्ष के बुढ़े, अभी 5 वर्ष का बालक, लेकिन हमसे भी क्या वैराग्य बयान, क्या निश्चिंत है। जो भी हो गुरु तो इसी को बनाना चाहिए, ये हमारे गुरु लायक बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। श्रद्धा हो गई सनत कुमारों की है? तब लेकिन ये तो दौड़े जा रहा है, खड़ा ही नहीं हो रहा है। चलो खोजते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाके विश्राम करेगा, जहां भी मिलेगा इन्हीं को गुरु बनाएंगे। अब दूसरा किसी को गुरु बनाने का चांस नहीं है। तो गए तो थोड़ी देर दूर जाकर भगवान शिव एक बट वृक्ष के सड़क के किनारे बट वृक्ष के नीचे दक्षिण तरफ मुंह करके आराम से बैठे हैं। सनत कुमारों ने देख लिया, ए देखो बैठा ही मिल गया, मिल गया। तो अब तो इन्हीं को घेर के यहां बैठ जाओ, जब इनकी समाधि टूटेगी तब हम इनको कहेंगे कि हमको दीक्षा दे दो, तो हम गुरु धारण करेंगे, उपकृत होंगे, तब फिर सब कुछ हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ब्रह्म विद्या फलीभूत हो जाएगी, सफल हो जाएगा। बैठे रहे, भगवान शिव ने आंख भी नहीं खोली, कोई स्पंदन नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर भी सनत कुमारों को तो पहले गुरु करना था, उसके बाद और को कोई लक्ष्य ही नहीं था, तो जाएंगे कहां, ऐसा गुरु तो और मिलना भी संभव नहीं था पृथ्वी में। आराम से बैठे रहे, कभी न कभी तो आंख खोलेंगे, इस धैर्यता के साथ बैठे रहे। तो भगवान शिव ने धीरे से आंख भी नहीं खोला और हाथ उठाकर ये चिन्ह मुद्रा भद्रा मुद्रा का संकेत कर दिया। ये संकेत करते ही सनत कुमारों को बोध हो गया, ये देखो ब्रह्म जीव जगत त्रिगुणात्मिका, ये जीव जगत से अलग होकर ब्रह्म के साथ एक होता है, तब ये जीवो ब्रह्म ही बनाकर तत्त्वमसि। महावाक्य का उपदेश तो ये मुद्रा से दे दिया है, बस ज्ञान प्राप्त हो गया, यही हमारे गुरु हैं। सनत कुमारों ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम की। भगवान शिव तो ध्यान में बैठे रहे थे और सनत कुमार चले गए। इस दृश्य को शंकराचार्य ने इस श्लोक के द्वारा वर्णन किया है। चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्य गुरोर युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु हाँ युवा है, शिष्य वृद्ध है, बट वृक्ष के नीचे, बड़ा आश्चर्य है। और गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, बिना बोले ही गुरु ने उपदेश किया, शब्द का प्रयोग नहीं किया। और शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यों को सब ज्ञान प्राप्त हो गया, महावाक्य का ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या आश्चर्य की घटना घटी। शंकराचार्य जी इस श्लोक के द्वारा उसी पर संकेत कर रहे हैं। सनत कुमार तो उत्तम क्वालिटी के शिष्य थे, तो सेवा किए बिना पहले ही चित्त शुद्ध था, उनको आगे सेवा करने की जरूरत नहीं थी, श्रवण मनन आदि करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपके द्वारा मौन उपदेश से ही उनका काम बन गया महाराज, लेकिन मैं ऐसा योग्य नहीं हूं, मैं तो भीम जैसा जड़ बुद्धि वाला हूं, मुझे तो आप अनुशासित करिए, आज्ञा करिए, वाक्य को उपदेश करें। बोले फोकट में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सेवा करना नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान ने कहा महाराज आप जो कहोगे वो सेवा करूंगा। पापोत्पात विमोचनाय, जीवन में जो अविद्या है वही पाप है, उस अविद्या रूपी पाप का ही उत्पात जब तक जी रहे हैं उसी का साम्राज्य है। पापोत्पाप उत्पात भूख प्यास आदि व्याधि, भूख प्यास जन्म मृत्यु ये सब क्या है? पापोत्पात, पाप का उत्पात है ये, तूफान है ये, उसी के चलते उस पाप को नष्ट करना मेरा लक्ष्य है। पापोत्पातम विमोचनाय रुचिर ऐश्वर्याय, हे मृत्युंजय रुचिर ऐश्वर्याय, यानी ब्रह्म साम्राज्य प्राप्ति के लिए, ये कोई साम्राज्य नहीं ब्रह्म साम्राज्य है। उपनिषदों के उपनिषद में आत्मज्ञानी को क्या कहा? स्वराट भवती सम्राट भवती, उन ज्ञानियों को कहा है ब्रह्म साम्राज्य, ब्रह्मा जी का नहीं ब्रह्म साम्राज्य, उसको प्राप्त है, उसी को यहां ऐश्वर्याय कह दिया। उसकी प्राप्ति के लिए मैं आपके पास आया हूं, आप मुझे मौन उपदेश न करें, मेरी समझ में नहीं आएगा। सनत कुमारों को जो मौन उपदेश किया वो मुझे समझ में नहीं आएगा। मामे अवचह, मेरे सामने मौन नहीं रहना भाई, मुझे शब्दों से उपदेश करना, तत्त्वमसि शब्द उच्चारण करके मुझे उपदेश करना। बोले फोकट में? बोले नहीं महाराज, हम आपकी हर सेवा करेंगे महाराज। स्तोत्र, यदि आपको अच्छे अच्छे आपकी प्रशंसा सुनने की इच्छा हो तो वो भी हम करेंगे। स्तोत्र ध्यान नति, स्तोत्र माने स्तुति गान, ध्यान माने चित्त में उनकी छवि का चिंतन, नति माने उनको ही प्रणाम, प्रदक्षिणा उनका परिक्रमा, सपरियाय पूजा अर्चना, आलोचना आलोकना उनके मूर्ति का विग्रह का दर्शन, आकर्णन सुनने के लिए उपदेश सुनने के लिए सत्संग सुनने के लिए कान, ये साधन मेरे पास है, मैं ये सारे साधन आपकी सेवा में लगा दूंगा भाई। क्या क्या? स्तोत्र के लिए जिह्वा, ध्यान के लिए चित्त, नति के लिए सिरा, प्रदक्षिणा के लिए अंग्रीद्वय, सपरिया के लिए हस्त, आलोकन के लिए नयन और आकर्ण के लिए श्रोत्र इंद्रिय, ये सब आपकी सेवा में मैं लगा दूंगा महाराज। ये सब को सब आपके ही सेवा में रहेंगे। अहम प्रार्थित हो, इन सबके द्वारा मैं आपकी प्रार्थना करता हूं। माम आज्ञापय, माम आज्ञापय, और क्या सेवा करना है वो आप मुझे आज्ञा दें। तन निरूपय, उनको भी आप प्रतिपादन करें। माम आज्ञापय, मुझे उपदेश करें और उनके अर्थ का निरूपण भी करें। मुहूर् बार बार निरूपण करें, बताएं, एक बार नहीं 9 बार तक भी करना पड़े करना है तत्त्वमसि। मामेव मामे अवच, मेरे सामने मौन नहीं रहना, बस जैसे सनत कुमारों को मौन किया वो मेरी समझ में नहीं आएगी, मुझे तो आप बोलकर ही शब्द के रूप में ही महावाक्यों का उपदेश करना, इशारों से नहीं। रही बात सेवा की बात है, ये सब आपके सेवा में समर्पित कर रहा हूं मैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।